नमस्कार भारत 14 अक्टूबर दिन बुधवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। शिवसेना ने दी विवाद को और हवा, सुधींद्र के चेहरे पर स्याही पोतने वालों का सम्मान। क्या भाजपा और शिवसेना के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे?
शिवसेना और बीजेपी, इनका कोई भी पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, इनका कोई भी आइडियोलॉजिकल अलायंस नहीं है, इनका कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल अलायंस नहीं है, इनका सिर्फ पावर अलायंस है।
ले चलेंगे आपको बिहार के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में, जहां पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर है।
बदलाव चाहते हैं कि सरकार
ना, बदलाव चाहते हैं।
तो बदलाव किस तरह का बदलाव चाहते हैं?
जीत के जाते हैं ना, तो गांव में कभी हुलके तक नहीं मारने आते।
और पाकिस्तान से आकर भारत में पनाह ले रहे हिंदुओं पर होगी ये खास रिपोर्ट, लेकिन पहले सुनिए बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, अशोक कुमार से। शिवसेना ने मुंबई से सटे कल्याण डोंबिवली क्षेत्र में नगर पालिका चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रही शिवसेना के इस फैसले से दोनों दलों के बीच मतभेदों का पता चलता है। शिवसेना का ताज़ा फैसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस बयान के बाद आया है कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष सुधींद्र कुलकर्णी पर सोमवार को स्याही फेंकने से महाराष्ट्र की बदनामी हुई है। कुलकर्णी ने मुंबई में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी की किताब का विमोचन कराया, जिसका शिवसेना विरोध कर रही थी। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने इसराइल और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में बढ़ते तनाव को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की है। यरूशलम में हुए ताज़ा हमलों में कल 3 इसराइली मारे गए। हिंसा में ये वृद्धि यरूशलम में स्थित अलक्सा मस्जिद में श्रद्धालुओं के जाने को लेकर हफ्तों से चल रहे तनाव के बाद हुई है। अलक्सा मस्जिद यहूदियों का भी पवित्र स्थल है, जिसे वो टेंपल माउंट कहते हैं। जॉन कैरी ने कहा कि हिंसा को रोकना होगा।
Naturally, we mourn the loss of any life, no matter who it is.
स्वाभाविक तौर पर लोगों के मरने पर हमें बहुत दुख है, भले ही मरने वाले कोई भी हों, लेकिन ये हिंसा और इसे भड़काने वाले कदमों पर रोक लगानी होगी। स्थिति बहुत ही अस्थिर और खतरनाक है, इससे वो परिणाम नहीं निकलेगा जो लोग चाहते हैं। मतभेदों को तो बातचीत से ही दूर करना होगा। ये थे अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी के शब्द। अमरीकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा है कि अब समय आ गया है जब अमरीका से ट्रेनिंग लेने वाले इराकी बलों को रमादी शहर को इस्लामिक स्टेट के नियंत्रण से मुक्त करा लेना चाहिए। मंत्रालय के प्रवक्ता स्टीव वॉरेन ने कहा कि बीते 10 दिनों में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर 52 हवाई हमलों ने चरमपंथियों को कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि लड़ाई मुश्किल होगी, लेकिन अमरीका समझता है कि इराकी सरकारी बल रमादी को फिर से हासिल कर सकते हैं, जिस पर मई से इस्लामिक स्टेट का नियंत्रण है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल करने उतरे 5 दावेदारों के बीच आज पहली बहस होनी है। इनमें सबसे प्रबल दावेदार पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन हैं, जिनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी सीनेटर बर्नी सैंडर्स माने जा रहे हैं। वहीं 3 अन्य उम्मीदवार रेस में काफी पीछे दिख रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी में भी उम्मीदवारी की रेस जारी है। अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। नाइजीरिया के उत्तरी शहर मैदेगुरु में 3 धमाके हुए हैं, जिनमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। अपुष्ट खबरों में कहा गया है कि धमाकों को आत्मघाती हमलावरों ने अंजाम दिया, और इस साल के प्रतिष्ठित द मैन बुकर प्राइज के लिए जमैका के लेखक मार्लन जेम्स को चुना गया है। बीबीसी समाचार।
तारीख 14 अक्टूबर दिन बुधवार। नमस्कार भारत में, अभिवादन स्वीकार कीजिए पंकज प्रियदर्शी का। सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर स्याही पोतने वाले शिव सैनिकों के लिए कल का दिन यादगार रहा। यादगार इस मायने में क्योंकि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ इन 6 शिव सैनिकों को अपने घर बुलाया, बल्कि सम्मानित भी किया और उनकी सराहना भी की। पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने तो इन शिव सैनिकों की तुलना सीमा पर तैनात सैनिकों से कर दी। लेकिन 6 शिव सैनिकों को सोमवार की रात को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। इस पूरे मामले ने महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ दोनों पार्टियों के रिश्तों में खटास पैदा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच दरार और चौड़ी होती जा रही है। अगले महीने होने वाले कल्याण डोंबिवली नगर निगम चुनावों में शिवसेना और बीजेपी में गठबंधन नहीं हो पाया है। एक रिपोर्ट के साथ हैं अश्विन अघोर।
पहले गुलाम अली के कार्यक्रम का विरोध, बाद में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी के पुस्तक विमोचन को लेकर आयोजक सुधींद्र कुलकर्णी के मुंह को कालिख फोतना। शिवसेना तथा भाजपा के बीच विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कुलकर्णी के मुंह पर कालिख फोतने वाले उन 6 शिवसैनिकों को अपने निवास स्थान मातोश्री पर बुलाकर उनकी पीठ थपथपाई है। इसमें भाजपा नेता नाराज है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने इसका समर्थन करते हुए कहा है कि यह राष्ट्रवाद का प्रदर्शन है। उन्होंने यह कहा, हर बार सिर्फ शिवसेना से ही सत्ता छोड़ने को कहा जाता है। राउत ने भाजपा को यह नसीहत भी दे डाली, यदि उसे शिवसेना के राष्ट्रवाद से आपत्ति है तो सत्ता छोड़ दे। इस पर हमने भाजपा प्रवक्ता केशव उपाध्याय से बात की।
भाजपा ने आज भी स्पष्ट किया था, इसके पहले स्पष्ट किया था, सरकार जब चलाते हैं तो सरकार चलाते समय कुछ प्रोटोकॉल हमेशा रखने पड़ते हैं, और केंद्र सरकार के जो वीसा पे जो लोग यहाँ आए थे, केंद्र सरकार का वीसा था, और इसके पहले भी जब हम अपोजिशन में थे तब भी हमने कभी गुलाम अली को अपोज नहीं किया, हम अपने स्टैंड पे फर्म थे। अगर कोई इस प्रकार से ऑथेंटिक वीसा लेके अगर इंडिया में आता है, उसका कार्यक्रम है, तो उसको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, उसका कार्यक्रम होना चाहिए। इस प्रकार का हमने पहले भी स्टैंड लिया था, आज भी हमारा स्टैंड वही है। शिवसेना इसमें क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, मुझे लगता है शिवसेना में इस पर खुद स्पष्ट करना चाहिए।
शिवसेना तथा भाजपा के बीच बढ़ती दूरियां एक बार फिर तब सामने आई जब मुंबई से सटे कल्याण डोंबिवली नगर निगम चुनावों में इन दलों का गठबंधन न हो सका। इस नगर निगम के लिए शिवसेना तथा भाजपा ने 122 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। फिलहाल यहां शिवसेना भाजपा गठबंधन सत्ता में है। पिछले साल जब से महाराष्ट्र में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार बनी है, तब से शिवसेना सरकार में शामिल होने के बावजूद राज्य तथा केंद्र सरकार की आलोचना का एक भी मौका नहीं चूक रही है। इन विधानसभा चुनाव में भी शिवसेना केवल 63 सीटें जीत पाई है, जबकि भाजपा ने 122 सीटें जीती है। आज तक हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहे शिवसेना को यह छोटे भाई की भूमिका रास नहीं आ रही है।
ये थे अश्विन अघोर। महाराष्ट्र में गुलाम अली और सुधींद्र कुलकर्णी प्रकरण को लेकर शिवसेना और भाजपा के बीच बढ़ती दरार से ये सवाल उठने लगे हैं कि कहीं ये दोनों के रिश्तों के अंत की शुरुआत तो नहीं। यही सवाल रखा हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने वरिष्ठ पत्रकार कुमार केतकर के सामने।
एक तो ये बिगिनिंग ऑफ एंड नहीं है, और ये आपसे अंडरस्टैंडिंग की भी बात नहीं है। ये वनपमैनशिप जिसको कहते हैं कि मेरी कमीज आपसे ज्यादा सफेद कमीज है, मैं आपसे ज्यादा लोगों के साथ में हूँ, मैं आपसे ज्यादा मुंबई और मराठी लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, प्रातिनिधिक हूँ, ये दिखाने में उनकी ये कंपटीशन है, ये इंटरनल कंपटीशन है। शिवसेना और बीजेपी, इनका कोई भी पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, इनका कोई भी आइडियोलॉजिकल अलायंस नहीं है, इनका कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल अलायंस नहीं है, इनका सिर्फ पावर अलायंस है। और जो पावर अलायंस मेंटेन करने के लिए जरूरत होता है उतना ही वो देखते हैं, बाकी वो पूरे एकमेक के खिलाफ है।
केतकर जी, पहले शिवसेना ने गुलाम अली का विरोध किया, फिर सुधींद्र कुलकर्णी पर जो है स्याही फेंकी गई, तो आपको नहीं लगता कि फडणवीस को शिवसेना से उसी समय बात करनी चाहिए थी जब गुलाम अली का प्रकरण हो रहा था?
दोनों जानते हैं कि एकमेक को उनके अभी तक जरूरत है, बीजेपी को खुद की मेजोरिटी नहीं है, और शिवसेना को गारंटी नहीं है कि हमें मेजोरिटी मिलेंगी, इसी के लिए वो दोनों कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं कि कौन किसको ज्यादा एडवांटेजेस रहेगा। गुलाम अली का एपिसोड जो है वो एपिसोड नहीं होता तो दूसरा कोई एपिसोड होता, उसमें रिलीजन, पाकिस्तान, आइडियोलॉजी कुछ नहीं। इसका सीधा एविडेंस यह है कि आदित्य ठाकरे 10 दिन पहले एक कॉन्सर्ट में हाजिर था, जहां पाकिस्तान के एक सिंगर आए थे, उनका चीफ गेस्ट आदित्य ठाकरे था, उसके बारे में उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया कि वो कैसे थे, और अभी उन्होंने डिमांड की है कि पाकिस्तानियों को वीसा भी नहीं देना चाहिए। तो पाकिस्तानियों को वीसा नहीं देना चाहिए, लेकिन आदित्य ठाकरे हाजिर रह सकते हैं एक कॉन्सर्ट में ही, और बाद में गुलाम अली को विरोध करते हैं। इसका मतलब यह है कि अभी कल्याण डोंबिवली रीजन नॉर्थ ऑफ मुंबई, वहां जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन में शिवसेना खुद की आइडेंटिटी, खुद की मराठी आइडेंटिटी प्रस्थापित करना चाहती है, और जो वो इलेक्शन नहीं होती अभी तो गुलाम अली का एपिसोड नहीं होता।
जी, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में बीजेपी बहुमत में है, तो क्या कहेंगे कि अब शिवसेना जो कि उनकी एक सहयोगी पार्टी है वो उनके लिए एक लायबिलिटी बन गई है?
थोड़ी सी शिवसेना लायबिलिटी है, लेकिन हेल्प भी है। सिर्फ लायबिलिटी नहीं है, हेल्प भी है। समझो कि शिवसेना नहीं है उनके साथ तो उनको एनसीपी के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, और एनसीपी के ऊपर डिपेंड करना बहुत डेंजरस है, क्योंकि एनसीपी कभी भी सपोर्ट निकाल सकती है। एनसीपी कह सकते हैं कि हम कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, जैसे इसके लिए उनको शिवसेना के साथ जाना कंपलसरी हो गया है।
वरिष्ठ पत्रकार कुमार केतकर से बात कर रही थी हमारी सहयोगी सुशीला सिंह। और अब रुख करते हैं बिहार का। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मखदूमपुर की सीट से लड़ते हुए इमामगंज सीट से भी चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? उनके करीबी लोगों का कहना है कि मांझी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और जनता दल यूनाइटेड के नेता उदय नारायण चौधरी से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि चौधरी ने ही उनका साथ दे रहे बागी विधायकों को डिसक्वालीफाई कर दिया था। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने इमामगंज में जीतन राम मांझी का समर्थन कर रहे कुछ ग्रामीणों से बात की।
मैं इस वक्त इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में हूँ, जहाँ से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं, और बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ हैं जो हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा जो संगठन उन्होंने बनाया जनता दल यूनाइटेड से अलग होने के बाद, उसके कार्यकर्ता खड़े हैं मेरे साथ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ साहब के, ये बताइए कि आप लोग पहले जनता दल यूनाइटेड में थे या हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा में सीधे आए?
नहीं, जनता दल यूनाइटेड में थे। हम लोगों को अपना लोकल आदमी मिला, इसके कारण हम लोगों ने उनको छोड़ दिया।
विकास की बात जब आती है तो बिहार में विधानसभा के चुनाव शुरू तो हुए थे विकास के मुद्दे पर, लेकिन उसके बाद जात पात पर आ गया पूरा मामला।
नहीं, जात पात पर कोई बात नहीं।
तो ये पूरी राजनीति यहाँ पर दलित और महादलित वाला जो है फैक्टर है,
यहाँ देखा जा रहा है सर कि 20 साल से यहाँ हमारे जो स्पीकर साहब उदय नारायण चौधरी जी यहाँ चुनाव जीत करके जा रहे हैं, लेकिन विकास जिस तरह का शुरू है उसी तरह से शुरुआत से ही उसी तरह का यहाँ
वो 20 साल के बीच में आज तक ही बना है। आज 20 साल पहले ही ऐसा नहीं था, या 10 साल पहले भी नहीं था। ये तीसरा बार जीतने के बाद ही वो लास्ट चरण में ये बनाया,
चौथा बार जीतने के बाद ये काम करवाई ने।
ये तो बहुत ज्यादा पिछड़ा है, इमामगंज विधानसभा तो बहुत ज्यादा पिछड़ा है, और सब क्षेत्रों से बहुत ज्यादा।
लुटुआ पंचायत जा करके देखिए सर, न तो कहीं चापाकल मिलेगा सही।
लेकिन एक बात बताइए, जीतन राम मांझी भी तो मंत्री रहे थे
जी,
उसके बाद मुख्यमंत्री भी बने।
मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री बन करके ही विकास का जितना जो कार्य अपना चलाने लगे, बस थोड़ा दो चार पाँच महीना रहे हैं वो, फिर तो
उतार। उसके पहले तो मंत्री थे ना?
मंत्री थे तो सर वो तो अपना गया मखदुमपुर से चुनाव जीतते थे, वहाँ के ही विकास के लिए सोचते हूँ।
विकास अच्छा किए वहाँ पे, थाना किए, ब्लॉक और जो भी है वहीं पे ही, अपना घर के पास ही जो विकास है।
बोल रहे हैं सर कि मतलब बोले थे उस वोट तब की इलेक्शन में कि हम जीतेंगे तो घर घर में लाइन देंगे।
कौन बोला था?
उदय नारायण चौधरी बोले थे। अब अभी देखिए सर, पब्लिक हर गांव में मतलब है कि बिजली की सिंचाई बहुत कम है।
बदलाव चाहते हैं कि सर,
बदलाव चाहते हैं।
तो बदलाव किस तरह का बदलाव चाह रहे हैं?
चौधरी जी जीत के जाते हैं ना तो गांव में कभी हुलके तक नहीं मारने आते, एक ही बार बस।
हम तिलैया पंचायत के सुरेश चौधरी है। उदय नारायण चौधरी बोली थे कि पहला कलम चलेगा हरी नदी पर। आज 15-3 इलेक्शन जीते हैं, 15 साल हो गया।
तो डैम बनाने की बात थी?
डैम बनाने की बात थी। आज लोग हम लोग पानी बाहर तरस रहे हैं सर, धान मर गया।
ये कास्ट विशेष पे यहाँ पे ज़्यादातर चुनाव में वही हो रहा है बिहार में, आपको सब पता है। कुछ लोगों ने कहा कि अगर मांझी जी मुख्यमंत्री सॉरी विधायक बनते हैं तो यहाँ के जो उनके कास्ट से जो लोग बिलोंग करते हैं वो जो है वो एकदम सिर पे चढ़ जाएंगे। वो किसी को ये भी नहीं देखेंगे कि यहाँ पे आप जो बड़े जात के लोग हैं उनको कभी कुछ वैल्यू नहीं देंगे, और जो जैसे मजदूर तबके जो लोग हैं खेत वेत में काम करते हैं वे लोग एकदम सर पे चढ़ जाएंगे। तो मैंने उन लोगों से कहा कि एक बात बताइए, जो हमारे मांझी जी हैं वो जब मुख्यमंत्री बने थे तब तो कोई हमारे सर पे नहीं चढ़ा, तो एक विधायक बनने के बाद सर पे कैसे चढ़ जाएंगे?
आप आरएसएस से हैं?
नहीं सर।
तो बीजेपी?
बीजेपी सर। तो सर हमारे
आप तैयारी के साथ बात कर रहे हैं इसलिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि जीत जाएंगे जीतन राम मांझी, दोनों जगह से जीत गए और ये वाली सीट छोड़ दिया, तब
ये वाली सीट नहीं सर, यहाँ हम लोग वादा किए, हम लोग धारणा दे करके जीतन राम मांझी को हम लोग लाए हैं यहाँ, यहाँ उनको चुनाव
लाए, पूरा जनता लोग मिल के लाए।
तो सुना आपने, ये एक आक्रोश है कि पिछले कई सालों से कई विधानसभा के चुनाव से जो यहाँ पर विधायक थे सिटिंग उदय नारायण चौधरी, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, लोगों का ये आम आक्रोश उनके खिलाफ है कि बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया, कम से कम यहाँ पर जो सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना करना पड़ सकता है उदय नारायण चौधरी को। सलमान रावी, बीबीसी, इमामगंज, बिहार।
और अब समय है बिहार चुनाव पर हमारी विशेष सीरीज बूझिए ना बिहार को। इस श्रृंखला में हम आपको अगले कुछ दिनों तक राज्य से जुड़े मिथकों और तथ्यों के बारे में बताते रहेंगे। दूसरी कड़ी में जानिए कि क्या नीतीश कुमार की छवि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन को वोट दिला सकती है।
बूझिए ना बिहार को। सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार से आज का सवाल,
क्या नीतीश कुमार की छवि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन को वोट दिला सकती है?
कुछ हद तक ये बात सही भी है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं। ये जरूर है, आज के सर्वेक्षणों के आधार पर देखें तो नीतीश कुमार बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभर रहे हैं। अगर इस बात की जानकारी हासिल की जाए, लोगों से इस बात को पूछा जाए कि क्या किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, सभी के जहन पे एक ही नाम है, नीतीश कुमार का नाम।
लेकिन क्या ये लोग जो कि उनको पसंद कर रहे हैं, ये उन्हें वोट भी देंगे?
इस बात पे थोड़ी आशंका है। आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखें तो जितनी लोकप्रियता किसी मुख्यमंत्री की होती है, किसी भी चुनाव में देखें, वो बिहार का चुनाव हो किसी अन्य राज्य का चुनाव हो, जितनी लोकप्रियता मुख्यमंत्री की होती है उतने वोट पार्टी को मिलते नहीं। हाल ही में के चुनाव में हमने देखा, 2010 के चुनाव में जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में 53% बिहार के लोग देखना चाहते थे, लेकिन हमें मालूम है इस गठबंधन को सिर्फ 39% वोट मिले। इसी तरह से जब लालू यादव अपनी पॉपुलैरिटी के हाइट पे थे, जब वो बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, ऐसे समय में जब लगभग 30% लोग उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन उनकी पार्टी को उतनी वोट उस चुनाव में नहीं मिली। जदयू गठबंधन के सबसे लोकप्रिय नेता है नीतीश कुमार, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी लोकप्रियता नीतीश कुमार की आज दिखाई पड़ रही है, वोट उस अनुपात में नहीं मिलेंगे। और एक चिंता का विषय यह है कि नीतीश कुमार की जितनी लोकप्रियता 2010 में थी, आज वो लोकप्रियता गिरी है, उसमें गिरावट आई है। ये एक चिंता का विषय जदयू आरजेडी गठबंधन के लिए हो सकता है।
बूझिए ना बिहार को। दुनिया की बड़ी खबरें बीबीसी के साथ सोमवार से शुक्रवार देखिए टीवी पर बीबीसी दुनिया, ईटीवी नेटवर्क के हिंदी और उर्दू के सभी चैनलों पर।
नमस्कार, स्वागत है आप सबका, यह है बीबीसी दुनिया, मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर।
यहाँ आकर वो लोगों को गले लगाते हैं और कहते हैं हम अब आजाद हैं,
अब पीना की मची
में उससे बात करने में बहुत मजा आता है।
तो देखना मत भूलिए बीबीसी दुनिया शाम 9:20 पर ईटीवी के साथ साथ bbchindi.com और बीबीसी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर भी। बीबीसी दुनिया।
और अब हमारी बारी है देश और दुनिया की खबरों पर, जिन खबरों पर रहेगी हमारी नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों से मिलेंगे। मोदी ने पिछले दिनों अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कहा था कि देश विदेश में बसे नेताजी के लगभग 50 परिजनों ने प्रधानमंत्री आवास पर आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। देश भर में लाखों मेडिकल स्टोर आज हड़ताल पर हैं। वो वेबसाइटों के जरिए दवाएं बेचने का विरोध कर रहे हैं और ऐसी वेबसाइटों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई होगी। एक गैर सरकारी संगठन ने यह याचिका दादरी कांड को लेकर बनाए गए केजरीवाल के एक विज्ञापन के खिलाफ दायर की है। केंद्र सरकार आज सितंबर महीने के लिए थोक मुद्रा स्फीति के आंकड़े जारी करेगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने 5 रन से भारत को हरा दिया था। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, पिछले साल पूर्वी यूक्रेन में मलेशियाई विमान को गिराए जाने की रिपोर्ट आने के बाद इस मुद्दे पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
और अब समय है खास रिपोर्ट का। पाकिस्तान के हिंदुओं का पिछले कुछ वर्षों से भारत में आकर पनाह लेने का सिलसिला जारी है। 4 दिनों के कठिन सफर के बाद पाकिस्तानी हिंदुओं का एक जत्था 19 सितंबर को दिल्ली पहुंचा। दिल्ली के जहांगीरपुरी और आदर्श नगर के बीच बन रहे एक मेट्रो स्टेशन के निकट एक मैदान में इस जत्थे ने पनाह ले रखी है। यहां अतिरिक्त 250 पाकिस्तानी हिंदू 2011 से ही रह रहे हैं। ये सारे लोग सिंध प्रांत से आए हैं। इन पाकिस्तानी हिंदुओं के अनुसार पाकिस्तान में उन्हें धार्मिक आज़ादी नहीं थी। उनका ये भी दावा है कि भारत ही उनका असली वतन है। जुबैर अहमद ने उनके साथ कुछ समय बिताया और ये रिपोर्ट तैयार की।
अपने पुश्तैनी घरों और पूर्वजों के गांव को छोड़कर खुले आसमान के नीचे एक बड़े मैदान के अंदर झोपड़ पट्टियों में रहना कौन पसंद करेगा? आसान सा जवाब है, गरीब और लाचार पाकिस्तानी हिंदू। आज उनका हाल पूछने मैं उनकी बस्ती में गया। जहांगीरपुरी और आदर्श नगर के बीच में एक खुला मैदान है जहाँ पर मेट्रो भी बन रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान के सिंध
फ्रांस से हिंदू आकर बसे हैं। 2011 में कई परिवार आए थे और 10-12 दिन पहले तकरीबन 71 लोग फिर से आए हैं और इसी कॉलोनी में रह रहे हैं। यहाँ झोपड़पट्टियों में ये रह रहे हैं। जल बोर्ड की ज़मीन है जहाँ पर इनको बसाया गया है।
बस्ती के अंदर एक साथ कई लोग बैठे थे जिनमें मर्द, बच्चे और औरतें शामिल थीं। मैंने 40 वर्षीय भगवान दास से पूछा, आप पाकिस्तान छोड़कर भारत क्यों आए?
वहाँ से ये हमारा सोच के आए थे कि वहाँ हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं और जाते हैं पढ़ने के लिए तो तालीम नहीं मिलती है। हम बच्चे पढ़ाने ले आए हैं और यहाँ रहने के लिए आए हैं। धर्म के खातिर हम आए हैं।
धर्म के खातिर आए हैं, ये बात कई और लोगों ने भी कही। हिंदू धर्म के बारे में आम पाकिस्तानी हिंदुओं को अधिक जानकारी नहीं है, जैसा कि पहलाज ने मुझे बताया।
हिंदू धर्म को आप पूरी अच्छी तरह से समझते हो?
नहीं, हमारे को अब तक उधर का मालूम नहीं है। हमारे को इधर की
मतलब धर्म के बारे में ज्यादा जानकारी
नहीं है, किसी को नहीं है। बच्चे को तालीम की कि उसकी जब तो पढ़े लिखे हो तो तालीम हमारे को आवे।
13 साल की राजवंती को हिंदू धर्म की कोई खास जानकारी नहीं।
कुछ मंत्र वगैरह याद है?
नहीं है।
कुछ भी नहीं?
कुछ भी नहीं।
फिर कैसे हिंदू हो?
आता नहीं हमारे को। हम हिंदू भी है, मंत्र आता है। ओम भूर्भुवः स्वः सर्वतः भर्गो देवस्य धीमहि।
वहाँ मंदिर गए कभी पाकिस्तान में?
जाते हैं।
तो कैसा लगता था?
कैसा लगता है? डर लगता है। छुप के हम जाते हैं इधर।
छुप के जाना पड़ता था?
हाँ।
खुले आम नहीं जा सकते थे?
नहीं जाते हैं, मुसलमान में हम नहीं जाते हैं।
तुम्हारे वहाँ मुसलमान दोस्त थे?
नहीं, कुछ नहीं दोस्त।
एक भी नहीं मुसलमान?
एक।
कोई लड़की वहाँ मुसलमान दोस्त नहीं थी?
नहीं, कोई नहीं।
पड़ोस के?
नहीं, पड़ोस घर में हमारा हिंदू है ना, इसको हम बना लेते हैं।
वो 13 साल की जरूर हो चुकी हैं लेकिन कभी स्कूल नहीं गईं। आखिर क्यों?
स्कूल मुसलमान की है, हमारे को कलमा पढ़ाते हैं,
इसीलिए नहीं जाते।
हाँ।
तो अब यहाँ पर आए हो तो यहाँ कौन से स्कूल में जा रहे हो?
तुम भेजोगे किधर जाए? हमारे को अभी आए, हमारे को पता नहीं है।
16 वर्ष की माला दास के अनुसार पाकिस्तान के हिंदुओं को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है।
लगता है यहाँ के हिंदू में बहुत फर्क है, वहाँ के भी हिंदू में बहुत फर्क है।
किस तरह का फर्क लगता है?
इस तरह का फर्क लगता है, यहाँ के हिंदू खुले मैदान में पूजा कर रहे हैं, वहाँ के हिंदू छुप के पूजा कर रहे हैं।
शिक्षा, धर्म और नौकरी में भेदभाव की शिकायत सभी ने की। सभी ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान नहीं, भारत ही उनका देश है। हालांकि बंटवारे के बाद ये तीसरी और चौथी पीढ़ियां थीं, लेकिन पाकिस्तान से उन्हें प्रेम ना हो सका, जैसा कि श्री चंद ने हमें बताया।
उधर से इधर अच्छा है।
कैसे?
पाकिस्तान से ये अपना देश है।
कैसे ये अच्छा है?
ये भारत माता है, हमारा असली यही है, हम हिंदू हैं, यहीं रहते हैं।
तो जब आप पाकिस्तान में रह रहे थे तब भी समझते थे कि भारत आपका अपना देश है?
जी, भारत अपना देश है। उधर रहे थे, जब रह रहे थे जब भी यहीं बोलते थे हमारा देश भारत है।
आपको तो मालूम ही होगा कि आज के ज़माने में क्रिकेट से ही देश से प्रेम की पहचान की जाती है, तो वो भारत की क्रिकेट टीम का समर्थन करते हैं। ईश्वर लाल बड़ी मासूमियत से इसका जवाब यूं देते हैं।
वाह, हमारा इंडिया जीत गया, ऐसे नहीं बोलते हैं, सच बोल रहे हैं।
ज़्यादा बाहर लोगों को नहीं बताते?
नहीं, बाहर लोगों को बताने का हमारा दिल नहीं कर रहा था, क्यों हमारे दिल में होता था, जीत गया तो हमारा दिल खुशी होता था।
पाकिस्तान में भेदभाव, भारत से प्रेम और हिंदू धर्म की सीख हासिल करने की तमन्ना इन्हें यहाँ खींच लाई, लेकिन भारत के हिंदुओं ने या आम भारतीयों ने इनका स्वागत किया? पहला आज कहते हैं,
भारतीयों के बारे में अब तक तो नहीं किया हमारे को।
दिल से नहीं लगाया आपको?
दिल से नहीं लगाया, गले से नहीं लगाया, हम ऐसे ही बैठे हैं, किसके आश्रय पे बैठे हैं।
भारत सरकार इनमें से कुछ की सुन रही है। पिछले 5 सालों में पाकिस्तान से आए 1400 से अधिक भारत सरकार ने शहरियत दी है, लेकिन इन लोगों का नंबर कब आएगा ये इन्हें नहीं मालूम। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
और अब समय है अखबारों की समीक्षा का, अशोक कुमार के साथ।
जी पंकज जी, आज के अखबारों में कई खबरों को प्रमुखता से छापा गया है। महाराष्ट्र में जहां भाजपा और शिवसेना की कलह की चर्चा अखबारों में है, तो वहीं रामल्ला में फलस्तीनी छात्रों के विरोध के चलते जो प्रणब मुखर्जी के कार्यक्रम में तब्दीली हुई इसकी खबरें भी हैं। पंजाबी लेखिका का पद्मश्री लौटाना और काला धन विदेश भेजने के आरोप में 2 बैंक अधिकारियों समेत कई लोगों की गिरफ्तारी, ये कुछ खबरें जो अखबारों के पहले पन्ने पर छाई हुई हैं। सरकार पर बरसी शिवसेना, कुलकर्णी की तुलना कसाब से की। ये सुर्खी जनसत्ता की है जो महाराष्ट्र में शिवसेना के तीखे तेवरों को पेश करती है। वहीं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष सुधींद्र कुलकर्णी ने खुद को शांति का एजेंट बताया है। ये बात उन्होंने खुद को शिवसेना द्वारा पाकिस्तानी एजेंट कहे जाने के जवाब में कही है। और इसके साथ ही साथ शिवसेना के नेता संजय राउत का ये बयान भी अखबार में छपा है, जिसमें वो कुलकर्णी पे स्याही फेंकने वाले लोगों का सम्मान किए जाने को उचित बता रहे हैं। नवा टाइम्स ने भी कालिक पोतने वालों के सम्मान को अपनी पहली खबर बनाया है। लेकिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खबर है, पंजाबी लेखिका ने पद्मश्री लौटाया, कथित सांप्रदायिक माहौल के खिलाफ लिया ये फैसला। नई दुनिया लिखता है कि पंजाबी लेखिका दलीप कौर तिवाणा ने सम्मान लौटाने की वजह मुसलमानों और 1984 में सिखों पर हुए अत्याचारों को बताया है। बता दें, तिवाणा को ये सम्मान 2004 में मिला था, जो सिख दंगे हुए थे उनके बहुत ही बाद।
लेकिन ये तर्क तो बहुत लंबे समय बाद
इस पे शायद सवाल उठेंगे। इसके अलावा अमर उजाला के पहले पन्ने पर मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान भी दिख रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आरक्षण पर उनके बयान का गलत मतलब
बहुत पुराना ये राग है।
लेकिन भागवत कह रहे हैं कि उन्होंने कभी आरक्षण का विरोध नहीं किया, बल्कि वो तो इसे उन लोगों को दिए जाने के पक्ष में है जो इसके असली हकदार हैं। यानी संघ प्रमुख ने फिर एक बार अपने बयान को लेकर सफाई दी है। बैंकों के अफसर समेत 6 गिरफ्तार, ये बड़ी खबर है नई दुनिया की, जो काला धन विदेशों में भेजने के मामले में हुई गिरफ्तारियों से संबंधित है। इनमें 2 बैंक अधिकारी भी शामिल हैं। जागरण ने अपनी सुर्खी में इसी बात को उभारा है, लिखता है काला धन विदेश भेजने वाले 2 बैंक अधिकारी धरे गए। और अगर अमर उजाला पर नजर डालें तो वहां खबर है फलस्तीन में प्रणव को करना पड़ा भारी विरोध का सामना, इसराइल के साथ भारत के नजदीकी संबंधों से खफा हैं फलस्तीनी छात्र।
बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका। और अब समय है खेल की खबरों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। 2020 सीरीज और उसके बाद कानपुर में पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच हारने के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम इंदौर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा मैच खेलने मैदान में उतरेगी। आज का मैच भी अगर भारत के हाथ से निकला तो फिर भारत के लिए 5 मैचों की सीरीज को बचाना बेहद मुश्किल होगा। पिछले मैच में अगर दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एबी डिविलियर्स ने 104 रनों की शतकीय पारी खेली तो भारत के रोहित शर्मा ने भी 150 रनों की शानदार पारी खेली। उन्हें लगता है कि भारतीय गेंदबाज महंगे रहे, लेकिन अब वो कुछ बेहतर करेंगे।
आपको ये भी देखना चाहिए कि उनके सेट बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे और हमारा जो प्लान एग्जीक्यूशन था वो ठीक से हुआ नहीं। वो कभी कभी हो जाता है, आई अंडरस्टैंड, बट आप ज्यादा दोष नहीं दे सकते बॉलर्स को क्योंकि ये पहला ही मैच है।
वैसे भारतीय टीम की समस्या बल्लेबाजी भी है, मध्यम क्रम चल नहीं रहा जिसमें विराट कोहली और खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी शामिल हैं। ऐसे में इंदौर में दक्षिण अफ्रीका के जीत के रथ को रोकना भारत के लिए आसान नहीं होगा। उधर आज से डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मुख्य मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं, जहां शीर्ष वरीयता हासिल भारत की साइना नेहवाल थाईलैंड की बुसानान ओंग बुमरुंग फान का सामना करेंगी। लेकिन पुरुष एकल वर्ग में भारत के श्रीकांत अजय जयराम से खेलेंगे। इनके अलावा पी कश्यप और महिला युगल वर्ग में ज्वाला गुट्टा तथा अश्वनी पोनप्पा भी अपना दावा पेश करेंगी।
कार्यक्रम के अंत में हम पहुंच चुके हैं, अब सुनिए प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। शिवसेना ने मुंबई से सटे कल्याण डोंबिवली क्षेत्र में नगर पालिका चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रही शिवसेना के इस फैसले से दोनों दलों के बीच मतभेदों का पता चलता है। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने इसराइल और फलस्तीनी क्षेत्र में बढ़ते तनाव को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की है और कहा है कि मतभेदों को बातचीत से सुलझाना होगा। अमरीका में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल करने मैदान में उतरे 5 दावेदारों के बीच आज पहली बहस होने जा रही है। सबसे प्रबल दावेदार हैं पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन, जिनका मुकाबला माना जा रहा है सीनेटर बर्नी सैंडर्स से, और इस साल के प्रतिष्ठित द मैन बुकर प्राइज के लिए जमैका के लेखक मार्लन जेम्स को चुना गया है। साथ ही नाइजीरिया के उत्तरी शहर मैदुगुरी में 3 धमाकों में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। अपुष्ट खबरों में कहा जा रहा है कि धमाकों को आत्मघाती हमलावरों ने अंजाम दिया। और अमरीकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा है कि अब समय आ गया है जब अमरीका से ट्रेनिंग लेने वाले इराकी बलों को रमादी शहर को इस्लामिक स्टेट के नियंत्रण से मुक्त करा लेना चाहिए। बीबीसी समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। स्टूडियो संभाला देवाशीष कुमार ने। पंकज प्रियदर्शी को अनुमति दीजिए, 8 बजे विश्व भारती में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।